positive and productive lifestyle. Sakaratmak evam sarjanatmak srujanatmak jivan shaili is vishay ke antargat aaj hum life positive ke spiritual perspective ke bare mein charcha karenge. Usha behan ji hum sabhi ke beech upasthit hai is vishay ko हम सबके सामने स्पष्ट करने के लिए. उपस्थित है आदरणीय सीनियर राजयोगा टीचर उषा बहन जी. उषा बहन जी पिछले 35 वर्षों से जिन्होंने अपना जीवन इस क्षेत्र में समर्पित किया है, आप पिछले 30 वर्षों से इस राजयोगा एजुकेशन के क्षेत्र में कार्यरत है. आपकी विशेषता है कि आप शुरू से ही, जब से इस संस्था से जुड़ी है, बहुत ही सकारात्मक और प्रोडक्टिव उत्पादक कार्यों से हर समय जुड़ी रही हैं. आप सेल्फ मैनेजमेंट और लीडरशिप कोर्स की यूं कहें कि भारत भर में एक विशेष रूप से मान्यता प्राप्त शिक्षिका है. आप बहुत से संगठनों में जाकर आपने सेल्फ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप कोर्स कराया है. यहाँ भी जो राजयोग शिविर के सत्र होते हैं, आप उनको बखूबी आपने सुना होगा सुबह ही. तो प्रस्तुत करती हैं उषा बहन से, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप इस विषय पर प्रकाश डालें.
ओम शांति. विश्व कल्याणकारी निराकार परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान, भाइयों और बहनों, आज का पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल का ये पांचवा सत्र के जिसमें स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या है. स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव जब कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअल किसको कहते हैं. स्पिरिचुअलिटी अर्थात दैट विच इज कनेक्टेड विद द स्पिरिट. स्पिरिट अर्थात आत्मा. और हिंदी में भी इसीलिए जब आध्यात्मिकता कहते हैं तो आध्यात्मिकता अर्थात अध्ययन के द्वारा आत्म उन्नति जिसमें होती हो उसको आध्यात्मिकता कहते हैं. शब्द को अगर अलग करेंगे तो अध्ययन द्वारा उन्नति किसकी, आत्मा की, उसको आध्यात्मिकता कहा. दोनों रूप से अगर देखा जाए, चाहे हिंदी या इंग्लिश, तो दोनों में जहां आत्मा की प्रगति की बातें हैं उससे कनेक्टेड जो बातें हैं वो है स्पिरिचुअल विजडम. आज के संसार में अगर देखा जाए तो ये स्पिरिचुअल विजडम का एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार से हो, क्योंकि न होने कारण ही आत्म उन्नति के बजाय अवनति होने लगी है. भौतिक क्षेत्र के अंदर तो काफी उन्नति कर लिया है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में अगर देखा जाए तो उन्नति कितनी हुई है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन से पता चलता है, ये मीटर है. तो यही कहा जाता कि दिन प्रतिदिन तनाव इतने बढ़ते जा रहे हैं कि ये तनाव वाले जीवन को लेकर के उन्नति या सेटिस्फेक्शन तो बहुत दूर की बात हो गई. तो कहीं ना कहीं कोई विजडम का एप्लीकेशन नहीं हुआ है. प्रैक्टिकल लाइफ में तो अनेक ऐसे पहलू आते हैं, अनेक सवाल हमारे सामने हैं कि जिसका उत्तर नहीं मिलता है. और जितना ही उन उत्तरों को खोजने का प्रयत्न करते हैं उतना ही उलझते ही जाते हैं और इंसान कभी कभी भीतर से टूट जाता है. स्ट्रेस्ड, हाइपर स्ट्रेस्ड और फाइनली नर्वस ब्रेकडाउन में लैंड अप हो जाता है. ये वास्तविकता है. प्रैक्टिकल विजडम लाइफ के अंदर जो है उसमें से मैं तीन बातों को आज टच करूंगी, और वो तीन बातें जो कॉमन है हर एक के लिए, इसीलिए मैं ये तीन बातों को स्पर्श करना चाहती हूं। पहला सवाल जो हर एक के मन के अंदर एवरीडे लाइफ में उत्पन्न होता रहता है वो यही है, कई बार अनेक के मुख से ये सुना हुआ है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं किसी के बारे में बुरा सोचता तक नहीं हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और उसका कोई जवाब है? नहीं है। और उस वक्त व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखी, मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और जब उसका जवाब नहीं तो मनुष्य की भीतर की हालत कैसी हो जाती है? खूब गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर टेंशन बढ़ता जाता है, और लगता है ये क्या जीवन है, है ना? कई बार हमें भी कई लोग पूछते हैं, बहन जी ओम शांति में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो गुस्सा ही ना आए? है ऐसा मंत्र, और आज हम आपको वो मंत्र देंगे जो अगर प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए तो ये गारंटी है कि गुस्सा नहीं आएगा। हाँ, अगर उसको तिजोरी में रख दिया बंद करके यहां से ले जा करके और उसका उपयोग ही ना करो तो गुस्सा जरूर आएगा। लेकिन आज हम आपके वो सवाल का जवाब देंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इसका जवाब देंगे। दूसरा जो सवाल का जवाब हर एक के मन के अंदर है, दूसरा जो सवाल है कि कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ ही ईर्ष्या क्यों होती है? हमारे प्रति ही लोग ईर्ष्या करके बुरा बोलने लगते हैं, उस वक्त को कैसे हम अपने आप को समझाएं? उस वक्त के लिए स्पिरिचुअल विजडम क्या है? जब हम जानते हैं कि ये व्यक्ति हमारी ईर्ष्या कर रहा है, और उस वक्त उस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे हैंडल करें? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल कि लोग हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं, उसके लिए प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल विजडम क्या है? ये तीन सवाल का जवाब, क्योंकि स्पिरिचुअल विजडम तो हर बात के लिए है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है इसलिए मैं ये तीन सवाल खाली उत्तर दूंगी। पहला सवाल जो कहा, तो पहला सवाल जो हमारे सामने है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसका जवाब बहुत सिंपल है कि मैं आपको एक घटना सुनाती हूं कि एक बार एक भाई थे, उसको कार एक्सीडेंट हुआ, उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। वो हॉस्पिटल में थे, जब हॉस्पिटल में थे तो जब हमें समाचार मिला तो हम उन्हें मिलने गए तो जाकर क्या कहेंगे, जरूर है कुछ सहानुभूति के ही शब्द कहेंगे। तो हमने उस भाई से कहा, भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ये वाक्य कहा, उस भाई को इतना गुस्सा आया, भगवान का नाम मेरे सामने नहीं लो, भगवान सबका बुरा करता है, वो हर एक का बुरा करता है, और इतनी भगवान को गाली देने लगा और बार बार एक ही सवाल करे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अब उसको क्या जवाब दे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसको भगवान के लिए इतना गुस्सा आ रहा था। ये मेरे को खुद को नहीं मालूम था, आश्चर्य लग रहा था, इतना अच्छा भाई, इतना भगवान में आस्था रखने वाले, आज इसकी आस्था इतनी हिल कैसे गई और इतना भगवान को गाली क्यों दे रहा है। आखिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जितना ज्यादा देर यहां खड़े रहेंगे उतना उसका गुस्सा बढ़ते जाने वाला है, बेहतर यही है हम बाहर निकल जाएं। तो हम बाहर आ गए। तो उसकी वाइफ आकर हमें कहने लगी, बहन जी अगर कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो आप प्लीज क्षमा कर देना। इस वक्त आप इनके मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। मैंने उस बहन से पूछा, इसका ये भाई इतना अच्छा और आज इसकी मानसिक स्थिति इतनी असंतुलित हो गई, एक कार एक्सीडेंट हुआ तो जो भगवान को गाली देने लग गया। तो वाइफ उसके कहने लगी मुझे कि नहीं बहन ऐसा नहीं है। तो क्या है? तो पता चला कि वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और उसने अपने टेन्योर में समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया था। इतना अच्छा काम किया था, अब उसका टेन्योर पूरा हो रहा है और उसका टेन्योर जब पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती होंगी, तो उसको उस गैदरिंग में जाना था और वो गैदरिंग में जाने से पहले 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हुआ। और उस गैदरिंग में क्योंकि उसने कोई यूनिक ऐसा समाज का कार्य किया था इसलिए उसका सम्मान होना था, उसको अवार्ड मिलना था। लेकिन अभी 10 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता है। तो जैसे एकांत के पलों में वो बैठता था और सोचता था, अरे वहां इतने बड़े बड़े लोग आए होंगे, मैं वहां जाता था, वहां मुझे अवार्ड मिलता था, मेरा सम्मान होता था, फोटो निकलता था, वहां से जब मैं यहां आता था तो यहां मुझे लोग कैसे रिसीव करते थे, और अब कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए वो बार बार यही सवाल करता था कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हर एक का अच्छा किया, और अच्छाई करने के बाद भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब उसका कोई जवाब ही नहीं था। खैर हम तो वहां से चले गए, समझ नहीं पा, किसी ने हमारे सामने सामने उसको कह दिया, हम सुन रहे थे बाहर से ही, तो किसी ने हमारे सामने बोल दिया उसको कि भाई भगवान को क्यों गाली दे रहे हैं, कर्म का हिसाब किताब तो हर एक को भोगना ही पड़ता है ना। उसको और गुस्सा आ गया, कर्म का हिसाब किताब हम कहां मना करते हैं, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था उसको, है ना, अब उसको क्या कहेंगे। खैर वहां से हम तो निकल गए। 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था तो सोचा चलो आज बाबा का प्रसाद लेकर के जाते हैं, शायद उस भाई की मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई हो। तो हम जो है प्रसाद लेकर के गए वहां, तो देखा वो भाई अकेले बैठे थे और बहुत ही जैसे खुश मिजाज में थे। तो जैसे ही हम गए तो कहने लगे, आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हुआ? तो फिर उसने बताना आरंभ किया कि न्यूज़पेपर उठाया और दिखाया कि जिस फ्लाइट में मैं जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया। फिर इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा, कहने लगा भगवान जो करता है अच्छा ही करता है ना। आज मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, मैंने हर एक का अच्छा किया था ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये छोटा सा एक्सीडेंट करके भगवान ने मुझे रोक लिया। अब एक्सीडेंट छोटा हो गया है ना, कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया था इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये छोटा सा एक्सीडेंट करके भगवान ने मुझे रोक लिया, नहीं तो आज अवार्ड तो मिलना ही नहीं था लेकिन जीवन भी चली जाती थी। तो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। अवार्ड तो शायद इस जन्म में मुझे मिलना ही नहीं था लेकिन ये नया जीवन जो मुझे मिला ये कोई कम अवार्ड है भगवान के तरफ से, है ना। और इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा। उसकी वाइफ मुझे कहने लगी, बहन जी यही ज्ञान 10 दिन पहले क्यों नहीं आया। उसने कहा मेरे जीवन का सबसे बुरे दिन अगर गए तो ये 10 दिन गए, पता नहीं उसने भगवान को कितनी गाली दी होगी। जो आया भगवान का नाम लिया और उसका गुस्सा चालू हो गया। तो फिर उसकी वाइफ ने मुझे कहा कि ये ज्ञान उसको 10 दिन पहले क्यों नहीं आया। मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन गए ना ये 10 दिन गए, इतना टेंशन रहता था मुझे, कोई भी आता था भगवान के नाम की कोई बात करता था इसका गुस्सा चालू हो जाता था, कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि संबंध खराब करने वाली बात हो जाए। कहा मुझे सिचुएशन को संभालने में इतना टेंशन होता था कि एक एक को बाहर ले जा करके हाथ जोड़ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी कि आप प्लीज उसकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना और उनकी बातों का बुरा नहीं मानना। कहा मैंने अपने कर्मों के लिए इतनी माफी किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए मुझे मांगनी पड़ी। तो मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन तो ये 10 दिन गए। मैंने कहा बहन भगवान का शुक्र करो कि समय ने पर्दा 10 दिन के अंदर खोल दिया कि क्या अच्छा समाया हुआ था। जिंदगी में कई कई घटनाएं ऐसी आती है जिसका पर्दा समय एक महीने के बाद खोलता है, वो महीना कैसे जाता है। और कई घटनाएं ऐसी आती है जिसका पर्दा समय एक साल के बाद खोलता, वो साल कैसा जाता है। सिर्फ एक स्पिरिचुअल विजडम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न होने कारण, और वो है गीता के महावाक्य, हे अर्जुन जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। सिर्फ उस समय का जो पीरियड है उस समय थोड़ी धैर्यता रखने की आवश्यकता है, थोड़ा मेंटल बैलेंस को रखना आवश्यक है, क्योंकि जितना उस बैलेंस को हम मेंटेन कर सकेंगे शायद वो समय को पार करना आसान हो जाता है। इसलिए जो गुस्सा आता है वो गुस्सा ना आए उसके लिए महामंत्र है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा, तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ भी हुआ नहीं है। जब हम कहते हैं ये बहुत बुरा हो गया, इसका मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी हमारी बुद्धि के अंदर है, हमारी समझ के अंदर है, इसीलिए हम उसको प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये महावाक्य मैं कोई नए, ये महामंत्र मैंने कोई नया नहीं सुनाया है, बचपन से शायद गीता के सार में ये बात हर एक के पास होगी, घर में कोई ना कोई कैलेंडर के रूप में होगी या कोई भी रूप में होगी, लेकिन वो तिजोरी में रखा हुआ है, उसको अभी अप्लाई करना सीखे कि जब भी ऐसी कोई घटना आए वेट, थोड़ा पेशेंस रखिए, और थोड़ा समय का इंतजार करना पड़ता है। वो क्लाइमेक्स का पीरियड जब क्रॉस हो जाता है आराम से आपको रहस्य समझ में आ जाएगा कि क्या अच्छा समाया हुआ था। जैसे एक साल के बाद हम कहते हैं अच्छा हुआ था, ऐसा हुआ तो नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता था, एक साल के बाद कहते हैं ना, तो पहले ही उसको अप्लाई कर लेवे ना। तो जो हमारी मेंटल एफिशिएंसी खत्म होती है, हमारी स्पिरिचुअल एफिशिएंसी खत्म होती है, वो तो कम से कम ना हो। ये पहला स्पिरिचुअल विजडम। इसीलिए ये जो सवाल है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, उसका जवाब है आपने किसी का बुरा नहीं किया इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता था, है ना, जीवन भी चली जाती थी या बहुत कुछ गंवा देते थे, लेकिन क्योंकि आपने किसी का बुरा सोचा नहीं, बुरा किया नहीं, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। उसके बाद भी कई लोग कहते लेकिन कई बार तो किसी को हम जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, उसके बाद भी वो ऐसा व्यवहार करके चला जाता है, उस समय क्या सोचना चाहिए, उस समय अच्छा कैसे समझे। मुझे याद आता है कि मैं एक प्रोग्राम में गई थी, प्रोग्राम हमारा था 3 से 5 बजे, शाम का समय हमारा फ्री था, तो एक परिवार वाले आकर हमें कहने लगे कि बहन जी अगर शाम के समय आप फ्री हो तो हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं और हम 1 घंटे का उनके लिए लेक्चर रखना चाहते हैं, आप आएंगे। तो हमने कहा शाम तो फ्री है हमारी, भले आप रखें, तो भले हम 7 बजे सबको इन्वाइट करें, हमारे घर में ही रखेंगे, लेकिन कम लोग होंगे लेकिन अच्छे लोग होंगे, स्पिरिचुअल माइंडेड लोग हैं हमारी कॉलोनी में। मैंने कहा जरूर रखिए। अच्छा 3 से 5 का हमारा प्रोग्राम था, 5 बजे के बाद कुछ प्रश्न उत्तर रहे, प्रश्न उत्तर के बाद लोगों से मिलना करना 5:30-6 हो गया। तो जो बहन हमारे साथ थी वो कहने लगी कि बहन जी अभी हम आश्रम जाकर के फिर अगर उनके घर जाएंगे ना तो रास्ता लंबा है और ट्रैफिक आवर शुरू हो गए हैं, तो कहीं रास्ते में अटक नहीं जाए, तो 7 बजे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं वहां पर। तो हमने कहा फिर क्या करना चाहिए, तो कहा यहां से ही सीधा चलते हैं। मैंने कहा यहां से कितना दूर है, कहा बस 15 मिनट का रास्ता है। मैंने कहा फिर तो बड़े जल्दी पहुंच जाएंगे, तो कहा कोई बात नहीं, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वो माइंड नहीं करेंगे अगर हम जल्दी भी पहुंच गए तो। ठीक है चलो। अब 15 मिनट में हम वहां पहुंच गए, 6 बजे पहुंच गए। अब उन्होंने इतना जल्दी, 1 घंटा पहले तो हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो क्या हुआ था कि सारी तैयारी करके सारा परिवार टीवी देखने बैठा था, है ना। अब हमें जब देखा तो थोड़ा हड़बड़ा गए, तो माँ बाप ने बच्चों को इशारा किया टीवी बंद करो, तो बच्चों ने इशारा किया हम बंद करने वाले नहीं है, है ना। आजकल की दुनिया में तो बच्चों के आगे माँ बाप का कुछ चलता नहीं है, तो जब बच्चों ने मना कर दिया इशारों से, हम देख रहे थे, तो माँ बाप ने कहा अच्छा बच्चे वॉल्यूम स्लो करो, तो उसने वॉल्यूम स्लो कर दिया। अब वहीं बैठना था, वहीं उनका टीवी रखा हुआ था, तो नेचुरल है उनका वॉल्यूम स्लो कराया, और यहां वो माँ बाप हमसे बात करने लगे कि कैसा रहा प्रोग्राम आपका, क्या हुआ आदि पूछने लगे। अब उनको डिस्टर्ब तो होगा वो बच्चों को, तो एक बच्चा था उसमें 10-12 साल का, आकर मुझे कहने लगा दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। बड़ी अच्छी भाषा में उसने मुझे कहा कि आप चुप रहिए। मुझे भी हंसी आई। फिर वो अपना जस्टिफिकेशन देने लगा और कहने लगा ये सीरियल है ना बहुत अच्छी है और हम उसको मिस करना नहीं चाहते आज, क्योंकि उसका लास्ट एपिसोड है और आज के एपिसोड में कई सस्पेंस खुलने वाले हैं, है ना, इसलिए हम उसको मिस करना नहीं चाहते, प्लीज डोंट माइंड। अच्छी बात है। तो मैंने सोचा अभी 1 घंटा निकालना है मुझे और साइलेंस में निकालना है, तो मैंने सोचा देखे तो सही इसका क्या सस्पेंस खुल रहा है। तो वो टीवी चल रही थी, मैं देखना आरंभ किया। अब मुझे एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ समझ में भी नहीं आता था, लेकिन पता नहीं उनका क्या सस्पेंस खुलता था, जो वो खुश हो जाते थे, सारे परिवार वाले खुश हो जाते थे, ताली बजाते थे, वाह बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। पता नहीं क्या अच्छा था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ और लास्ट में एंडिंग भी कोई खास नहीं थी, लेकिन सब खुश हो गए, बहुत अच्छा एंडिंग दिखाया, बहुत अच्छा एंडिंग दिखाया। आखिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने वो बच्चे को बुलाकर पूछा इसमें क्या अच्छा था, तो वो मुझे कहने लगा दीदी ऐसा है कि आपने सारे एपिसोड देखे नहीं ना, इसलिए आपको कुछ समझता नहीं था, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे है ना, तो हमको समझ में आता था कि इसका कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है, और इसलिए जब हम वो बातों को रिकलेक्ट कर लेते थे तो हमको अच्छा लगता था, बहुत अच्छा दिखाया ऐसा लगता था। इतना बोल करके वो बच्चा तो चला गया, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे समझा के गया कि ये संसार के अंदर हमारे भी कितने जन्म है, और एक एक जन्म एक एक एपिसोड की तरह है। अब ये कलयुग के समय में ये लास्ट एपिसोड चल रहा है। अब लास्ट एपिसोड में तो क्या होगा, सस्पेंस ही खुलेंगे ना। अब हम जा रहे हैं ट्रेन में, कोई हमारे बाजू में आके बैठा है, उसकी शक्ल, हमारी शक्ल किसी से मिल रही हो, कोई तीसरा व्यक्ति आया और देखा उसको, उसके बाजू में हमें बैठ करके देख करके उसको लगा ये वही व्यक्ति है और आकर के गाली दे दे करके चला गया, और हम सोचते पता नहीं क्या मतलब आया, हम उसको जानते नहीं पहचानते नहीं, बिना मतलब के गाली दे के क्यों चला गया, और कितना हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर हमें भी अपने सारे एपिसोड याद रहते थे तो हम क्या कहते थे, वाह बहुत अच्छा किया इसने, ये कहते थे ना। लेकिन क्योंकि हमें भी सारे एपिसोड मालूम नहीं, एक दृश्य का दूसरे दृश्य से या हमारे जीवन से कोई कनेक्शन नहीं, और वो घटना जब घटती है तब तो हमें बड़ा आश्चर्य लगने लगता है और गुस्सा आता है, रिएक्ट करने लगते हैं, तो उसके लिए स्पिरिचुअल विजडम है कि हमारे भी एक एक जन्म एक एक एपिसोड है,
और अगर हमें भी सारे एपिसोड याद आ जाए या कम से कम इतना स्पिरिचुअल विजडम को अप्लाई कर ले कि इसका कनेक्शन जरूर कोई ना कोई एपिसोड में होगा। और ये आज सस्पेंस खुला है, इसलिए एंजॉय द सीन, है ना, गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, ये स्पिरिचुअल विजडम कहती है। दूसरा प्रश्न जो था कि कई लोग हमारे साथ ईर्ष्या करते हैं, कार्य क्षेत्र पर है, कंपटीशन का युग है, कई लोगों को हमारे प्रति इतनी ईर्ष्या आती है और उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो चीज हमारे करियर पर, हमारे लाइफ पर अफेक्ट करती है और कुछ नहीं तो टेंशन हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करें हम? और ये सिचुएशन आज कंपटीशन के युग में हर एक के सामने आती है, लेकिन उसके लिए स्पिरिचुअल विजडम जो परमात्मा ने हमें दी है वो यही है कि बच्चे, जो भाग्य मैंने बनाया है अपने कर्मों से बनाया है, है ना, मेरा भाग्य जो है वो किसी और ने तो नहीं बनाया है ना, मैंने अपने कर्म से, चाहे पूर्व कर्म कोई ऐसा होगा या ये जन्म का ऐसा कोई कर्म होगा जिस कारण से ये भाग्य मुझे मिला है, राइट। अब कोई ईर्ष्या करके उल्टी सीधी बात बोले तो क्या ये भाग्य मेरा चेंज हो सकता है? मेरा भाग्य उसके बोलने से थोड़ी बना है, जो उसके ईर्ष्या करने से मेरा भाग्य चेंज हो सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहो, कोई कितना भी उल्टा बोल रहा है तो वो अपना भाग्य खराब कर रहा है, वो मेरे भाग्य को अफेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी कई बार हम देखते हैं अफेक्ट होता हुआ, उस समय कैसे सोचे, क्या सोचे, मेरे भाग्य को अफेक्ट अगर कर सकते हैं तो उसके बोलने से नहीं हुआ, परंतु वो उसने जो बोला उसके प्रति जो मेरा नेगेटिव थिंकिंग चल रहा है, वो नेगेटिव थिंकिंग जो हमारे आसपास एक ओरा क्रिएट करता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, वो ही मेरे भाग्य को अफेक्ट कर सकता है। तो वो व्यक्ति के बोलने से अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उस समय मेरा अपने प्रति जो सेल्फ डाउट आ जाता है और उस समय जो मेरे नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस आरंभ हो जाते हैं और इतना हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, वो मेरे भाग्य को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा भाग्य मेरे अपने सोच, मेरे अपने कर्मों से बना है। तो अफेक्ट अगर कर सकते हैं तो मैं खुद ही कर सकती हूं अपने सोच और अपने कर्म से। और उसके बोलने से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके बोलने से जो मेरा रिएक्शन, चाहे फिजिकली कर्मों के रूप में, चाहे विचारों के रूप में, जिस प्रकार निकलता है, वही जरूर मेरे भाग्य को अफेक्ट करता है। इसलिए कोई कितना भी उल्टा सीधा बोले, आप निश्चिंत रहो, क्योंकि उसके बोलने से ना आपका भाग्य बना है, तो उसके बोलने से ना आपका भाग्य मिट सकता है। यू आर द ओनली पर्सन हु इज द क्रिएटर ऑफ योर फॉर्च्यून एंड यू आर द ओनली पर्सन हु इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर ओन फॉर्च्यून। इसलिए ये प्रैक्टिकल विजडम अगर अप्लाई किया जाए तो उसमें से भी हम बच जाते हैं। और तीसरी बात कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं उसके बाद भी वो बुरा ही करते रहे, उस समय क्या स्पिरिचुअल विजडम अप्लाई करनी चाहिए? एक ही, सी लाइफ एज अ गेम, है ना। आपने क्रिकेट का खेल तो देखा है, क्रिकेट का खेल जब चलता है कितना आनंद आता है, कितना एक एक्साइटमेंट लोगों के अंदर रहता है ना। अब क्रिकेट के खेल में क्या होता है, एक बैट्समैन होता है और एक उसका साथीदार होता है, वो भी दूर खड़ा है, है ना, और बाकी चारों और कौन है, फील्डर्स है। उसकी जो अपनी टीम है वो दूर बैठी है, अगर बकअप के लिए, मोटिवेट करने के कुछ बोल भी बोल रहे तो भी हमें सुनाई नहीं दे रहे, खेलने वाले खिलाड़ी को थोड़ी सुनाई देते। तो इसलिए जब ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, अब बैट्समैन के सामने कोई भी बॉल उसके अपनी चॉइस का आएगा, आएगा नहीं, और टेढ़े मेढ़े बॉल जो आते हैं उसी में ही वो सिक्स या फोर लगाता है और तभी तो लोग उसकी क्लैपिंग करते हैं, वाह वाह करते हैं। जीवन भी ऐसा ही एक क्रिकेट का खेल है। आपके चारों ओर भी फील्डर्स ही खड़े होंगे जो मौका ढूंढ करके खड़े हैं कि कब मौका आए, कब अपॉर्चुनिटी मिले और उसको क्लीन बोल्ड या आउट करके दिखा दे हम, है ना। आपके अपने साथीदार कितने होंगे आपके साथ में? एक व्यक्ति, वो भी दूर बैठा होगा, और बाकी सब बकअप करने वाले, मोटिवेट करने वाले तो इतने दूर बैठे हैं जिसका एक भी शब्द आपको सुनाई नहीं दे पड़ रहा है। और जहां आप फील्ड पर है वहां तो चारों ओर कौन है? कंपटीशन के युग में फील्डर्स ही फील्डर्स है। वो हर वक्त ऐसे ताक में बैठे हुए हैं कि कब मौका मिले और इसको आउट करें। कोई भी घटना, कोई भी सिचुएशन आपके अपनी चॉइस की नहीं आएंगी, ये गारंटी है, ये याद रखिए। तो इसलिए आपको ये भी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट अगर रखनी है, ये भी स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट रखनी है कि हमें अपने जीवन के अंदर चारों ओर फील्डर्स का ही सामना करना है, इसलिए हम मेंटली प्रिपेयर हो जाए और ये स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट लेकर के स्पिरिचुअल विजडम का एप्लीकेशन करते हुए उस बॉल को, उस घटना के अंदर भी जो प्रोएक्टिव होकर के हमें बॉल को 6 या 4 लगानी है, वही तो आपकी खूबी है, वही स्पिरिचुअल विजडम है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसलिए ये 3 सवाल मेरे जो थे उसके ये स्पिरिचुअल जवाब है कि जब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाएगा तो अवश्य ही उसको आप जीवन के अंदर अप्लाई करके देखिए आपकी मेंटल कंडीशन किस प्रकार की रहती है और किस प्रकार आप उस जीवन को जीत लेते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए भी मेडिटेशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि तब तक मानसिक संतुलन आप नहीं रख सकेंगे। मानसिक संतुलन के लिए मेडिटेशन आवश्यक है, और जितना ही मेडिटेशन करते रहेंगे आप, हाँ इतना सहज नहीं है कि आज आपने जितना यहां सुना कल से आरंभ करेंगे मेडिटेशन आपका लगने लग जाएगा, नहीं। एक हाथ को ABCD लिखने की प्रैक्टिस देनी है, कितना प्रैक्टिस कराना पड़ता है। एक हाथ को खाली ABCD लिखना है, ये प्रैक्टिस करानी है, तो कितना टाइम लगेगा कि जब वो बच्चा ABCD लिख सकेगा? 6 महीना कम से कम। वो भी स्कूल में 10 बार ABCD लिखो, घर में होमवर्क के लिए ABCD दियो उसको 10 बार लिखने के लिए, तब जाकर के 6 महीने के बाद एक हाथ को प्रैक्टिस होती है ABCD लिखने की। एक माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग में ट्रेन करना हो तो कितना टाइम लगेगा? 6 महीना नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये हाथ में बुद्धि नहीं है, लेकिन यहां बुद्धि है। कोई बात समझ में आ जाए बस, एंड यू आर एबल टू डू इट, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं आपकी बातें अच्छी है लेकिन हमारी समझ में कम आती है। लेकिन जिस दिन समझ में आ जाए ना, वाल्मीकि की समझ में मैं आ गया कि मेरे पापों में भागीदार कोई बनने वाले नहीं है, तो उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा, ध्यान लगाने में कितना टाइम लगा होगा। तो जिस दिन हमारी बुद्धि की समझ में कोई बात आ जाए कि बस चेंज स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस, और वो चेंज जैसे आरंभ हो जाता है, धीरे धीरे आपका मन उसी तरफ चला जाता है, उसको फिर ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अवश्य प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे। अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर था लेकिन उसने भी प्रैक्टिस किया तब परफेक्शन को प्राप्त। और ये प्रैक्टिस करने की प्रेरणा उसने कहां से प्राप्त की थी पता है? एक दिन 5 पांडव रात को सोए हुए थे, आधी रात में भीम और अर्जुन बाजू बाजू में सोए थे, तो भीम पता नहीं कहां चला गया। अर्जुन की आंखें खुल गई, देखा तो भीम है ही नहीं। तो भीम जब है ही नहीं तो उसने सोचा देखूं कहां चला गया। उठ करके निकला तो देखा कि रसोई घर में वो भोजन कर रहा है। तो अर्जुन ने कहा भीम इस वक्त भोजन कर रहे हैं कहां? बड़ी भूख लगी थी। अरे भले करो लेकिन बत्ती जला देता था, अंधेरे में कैसे कर रहा है, और सीधा मुंह में जाता है, इधर उधर कहीं नहीं जाता है।
तो भीम मुस्कुराकर कहता है, अर्जुन अभ्यास, मुझे खाने का इतना अभ्यास है कि वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा यहीं जाएगा। वहीं से अर्जुन ने प्रेरणा ली थी कि अगर भीम अंधेरे में खा सकता है और मुंह में ही जाता है, मैं भी अगर अभ्यास करूं तो अंधेरे में तीर लगाऊं और निशाने को पहुंचना चाहिए। इसको कहते हैं अभ्यास। और ये अभ्यास अगर आप भी करेंगे तो मेडिटेशन कोई बड़ी बात नहीं है, सहज है। ठीक है, तो चले हम मेडिटेशन में थोड़े समय के लिए। स्वस्थ होकर के बैठ जाए सभी, राजयोगी की तरह बैठे, अपने सर्व कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य अधिकार हो, और अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं, अंतर्चक्षु से स्वयं को देखो, ब्रुकुटी की मध्य में मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति पुंज, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को हम ले चलते हैं एक यात्रा पर। अनंत की ओर पांच तत्व की दुनिया से दूर परमधाम की ओर स्वयं को उस दिव्य लोक में देखो जहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। वहां मैं स्वयं को देखती हूं ज्योति पुंज के रूप में, जहां कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, मुक्त हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में स्थित हूं, मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। एक फ्लॉलेस डायमंड की तरह मेरा स्वधर्म शांति है, मेरे मन की गति शांत होती जा रही है, चारों ओर शांति के प्रकंपन है। इसी शांति में अनंत शक्ति है। धीरे धीरे मैं स्वयं को पिता परमात्मा के सानिध्य में ले जाती हूं। जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हूं,
वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश पुंज है। कुछ क्षण के लिए मैं मन को उस दिव्य स्वरूप पर एकाग्र करती हूं और सर्व शक्तियों को अपने भीतर समेटती जा रही हूं। परमात्म शक्ति से मैं आत्मा स्वयं को भरपूर करती हूं। धीरे धीरे मैं मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में प्रकृति के मध्य में ओम शांति शांति।